दिन भर 14 नवंबर बुधवार सभी सुनने वालों को मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। रफाल लड़ाकू विमान सौदे के जांच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित।
पूरी सुनवाई खत्म हो चुकी है, इसमें कोई नोटिस आज जारी नहीं हुआ। आज सुनवाई पूरी हुई है, लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 3-3.5 घंटा की सुनवाई हुआ। हम ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते के बाद इसका जजमेंट आ जाए।
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस भाज्पा के प्रचार में तेजी।
राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार किया है डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर।
और दुनिया जहां में आज जानेंगे बांग्लादेश चुनावों के बारे में।
जहां से 13वां संविधान संशोधन में केयरटेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी, 15वां संविधान संशोधन।
लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाने के मामले में आज सुनवाई हुई। घंटों चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बहस के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रफाल सौदे की जाँच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने म्यांमार की नेता आंग सांग सूची से कहा है कि म्यांमार में पिछले साल रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हिंसा हुई उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। सिंगापुर में आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे दोनों नेताओं ने इस सम्मेलन से इतर एक मुलाकात की। माइक पेंस ने कहा, मैं म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के लोगों के हालात पर बहुत चिंतित हूँ। यह एक त्रासदी है जिसने लाखों अमरीकियों को दुखी किया है। 7 लाख रोहिंग्याओं का बांग्लादेश की तरफ पलायन करने को आप किसी भी तर्क के साथ सही नहीं ठहरा सकते। ये थे अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। श्रीलंका की संसद में आज नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। एक दिन पहले ही देश के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पिछले महीने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे की जगह राजपक्षे को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। हालांकि विक्रमसिंघे ने अपने पद से हटने से इनकार कर दिया था। विक्रमसिंघे की पार्टी से सांसद हारिन फर्नांडो ने आज पारित हुए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बीबीसी को बताया।
इट्स अ क्राइसिस क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ, ही विल हैव टू क्लियर द मेस हिमसेल्फ। सो द पार्लियामेंट,
यह राजनीतिक संकट राष्ट्रपति ने ही शुरू किया था और अब उन्हें ही इसे संभालना होगा। अभी तो देश की संसद न्यायपालिका के हाथों में चल रही है। मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति समस्या का समाधान निकालेंगे और देश को और बड़े संकट में नहीं फंसने देंगे। ये थे श्रीलंका के सांसद हारिन फर्नांडो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख ने बताया कि यमन में जारी युद्ध के चलते वहां की आधे से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। डेविड बिसली यमन के दौरे पर थे, उन्होंने वहां के हालात का जायजा लिया और इसके बाद कहा कि लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। बिसली ने कहा कि होदेदाह शहर में हालात इतने खराब हैं कि कोई सड़क पर भी नहीं चल सकता। अफगानिस्तान के पश्चिमी शहर फराह में सुरक्षा बलों और तालिबानी चरमपंथियों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से सैकड़ों लोग शहर छोड़ रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार की ओर से सही सुरक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से कुछ चरमपंथी शहर में घुसने में कामयाब रहे। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में 50 से अधिक सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। अफगानिस्तान की संसद ने उच्च सुरक्षा अधिकारियों को इस विषय में समन भेजा है कि आखिर वे तालिबान को रोकने में असफल क्यों हो रहे हैं। जापान के हिल्टन होटल ने क्यूबा के राजदूत को अपने यहाँ कमरा देने से इनकार कर दिया था। इसी सिलसिले में जापान प्रशासन ने होटल की आलोचना की है। दरअसल हिल्टन होटल को लगा था कि अगर वे क्यूबा के राजदूत को अपने होटल में ठहरने देंगे तो वो अमेरिका के क्यूबा पर लगाए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर देंगे। दक्षिण पश्चिमी जापान में स्थित हिल्टन होटल का स्वामित्व अमेरिका के पास है। जापान प्रशासन ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता के आधार पर रोकना जापान के नियमों का उल्लंघन है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इसका सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं, और मैं हूं मोहम्मद शाहिद।
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा, अगर आपको राफेल हवाई जहाज हिंदुस्तान में बेचना है, सरकारी कंपनी परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। 526 करोड़ में कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदेगा। भाइयों और बहनों, 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाला है।
रफाल लड़ाकू विमान सौदा, जी हाँ, इस मामले को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में एक चुनावी रैली में उन्होंने रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित धांधली का मुद्दा उठाया। वहीं इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में भी रफाल विमान सौदे का मामला छाया रहा। फ्रांस की दसों एविएशन से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने की जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई हुई। सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रफाल विमान सौदे की जानकारी सीलबंद लिफाफे में दी थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज और क्या क्या हुआ, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती से संपर्क किया, जो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे।
देखिए, जितने सारे पिटिशनर्स थे, मनोहरलाल शर्मा एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो गए, बाकी अरुण शौरी पूर्व यूनियन मिनिस्टर हैं, और उसके बाद सब लोग का पिटिशन का यही कहना था कि बेसिकली जो इसमें जो धांधली हुआ है, जो करप्शन का एलिगेशन लगाया गया है, जो कि कंपनी को दिया गया है, रिलायंस को दिया गया है, बहुत गलत तरीके से, जिनका कोई भी डिफेंस होदा में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको दिया जाए तो गलत है। इसके लिए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई प्रोब या एसआईटी प्रोब होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रोब होनी चाहिए, सो दैट की जितना सारा इलीगल काम हुआ है डिफेंस डील में, तो वो सारा कुछ लोगों के सामने आए। और जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, प्राइसिंग का सवाल में भी बड़ी ये लगाया है, इन्होंने आरोप लगाया है कि प्राइसिंग में यहाँ पे काफी गड़बड़ी किया इन लोगों ने। 670 या 700 करोड़ के लगभग के जो राफेल एयरक्राफ्ट है, उसको बहुत ऊंचे दामों में खरीदा गया है, तो उसको लेके भी काफी एलिगेशन लगे हैं। तो बाकी कोर्ट के ऊपर ये अभी निर्भर करता है कि कब इसका जजमेंट आए, लेकिन ये तो तय है कि कोर्ट चाहे डिसमिस करेगा या अलाउ करेगा।
क्या अदालत की ओर से कुछ उल्लेखनीय टिप्पणियां की गई हैं, कुछ बातें कही गई हैं?
जी देखिए, बहुत सारे आर्गुमेंट हुए, एयरफोर्स के अधिकारी लोग आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए, क्योंकि सीजेआई रंजन गोगोई ने ये बोला था कि इसमें जो डील्स हुए हैं, इसमें एक्सपर्टीज का जरूरत होता है, तो इसलिए एक्सपर्टीज को बुलाया गया था। तो उन्होंने जैसे ही आर्गुमेंट खत्म हुआ, सुनवाई खत्म हुई, तो उनको बोला गया कि आप अपने वार रूम में जा सकते हैं, यानी कि आप अपने काम संभाल सकते हैं अभी जाके। तो कुछ मिला के अगर देखा जाए तो इनका भी काफी लाइटर वेन में और आर्गुमेंट में दौरान ये सारा कुछ हुआ।
कहा यह जा रहा है कि अदालत में जो सुनवाई है वो पूरी हो गई है और अब अदालत फैसला देगी।
यहाँ पे अभी पूरी सुनवाई खत्म हो चुकी है, इसमें कोई नोटिस आज जारी नहीं हुआ, आज सुनवाई पूरी हुई है। लगभग आप कह सकते हैं कि लगभग 3-3.5 घंटा की सुनवाई हुआ। हम ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 2 हफ्ते के बाद इसका जजमेंट आ जाए।
रफाल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, अधिक जानकारी दे रहे थे वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर आज सिंगापुर पहुंचे। वो वहां ईस्ट एशिया समिट और आसियान भारत अनौपचारिक बैठक में भाग लेने पहुंचे हैं। सिंगापुर फिनटेक सम्मेलन का मुख्य भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए श्रेष्ठ जगह है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति माइक पेंस से भी मुलाकात की। इस पूरे दौरे से क्या हासिल हो सकता है, यही जानने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले पूर्व विदेश सचिव शशांक से संपर्क किया।
ये भारत ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का निर्धारण किया, तो मैं सोचता हूँ कि उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये ईस्ट एशिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ में रिश्ते बनाना है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो अपना उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उनका डेवलपमेंट के लिए और कनेक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है जल्दी से जल्दी लागू हो। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो इंडो पैसिफिक बारे में बातें की जा रही हैं, उसके अभी कॉन्टूर्स पूरे तरीके से उसका ढांचा बना नहीं है, लेकिन बातचीत जारी है भारत और अमेरिका में, भारत जापान में, भारत ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि इन सब देशों के साथ में ईस्ट एशिया समिट के प्रोसेस के थ्रू बात की जाए और मालूम करा जाए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आर्थिक प्रगति के साथ साथ शांति की भी स्थापना हो सके, और कोई ऐसा ना हो कि जो रूल बाउंड और ओपन टाइप का सिस्टम हमारा रहा है वह चलता रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें जो सब देशों के प्रतिनिधियों से और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ मुलाकात होगी और ये इनफॉर्मल मीटिंग है आसियान देशों के शीर्ष स्तर पर, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कई चीजों पर हमारे प्रधानमंत्री को और मौका मिलेगा ये देखने के लिए कि जो एक बात चल रही है कि एक रीजनल कोऑपरेशन प्लान बनना चाहिए इकोनॉमिक और कमर्शियल कोऑपरेशन के लिए, तो उसमें कितना आगे बढ़ने में भारत का और सब देशों का हित है और किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और बाकी तो खैर वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का और कनेक्टिविटी का ये सब मुद्दे वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और डिजिटल जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसमें भी ये सब देश आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भारत के पास जो है एक प्रकार से काफी लोग ऐसे हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं और कई कंपनीज ने भी जो है और देशों के साथ में अपना कनेक्टिविटी बनाई है, तो उसमें मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
एक अहम सवाल ये उठता है कि आसियान देशों की बात होती है, ईस्ट एशियाई देशों की बात होती है, लेकिन वहाँ अमरीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, चीन भी आता है, तो एक तरीके से कितनी बड़ी चुनौती रहती है व्यापारिक साझेदारों के लिए, भारत के लिए भी साथ ही साथ?
नहीं देखिए, बात यह है कि अब वैश्वीकरण के इस फेज में ये मानना कि कोई ईस्ट एशिया अलग रहेगा पैसिफिक अलग रहेगा तो वो बात नहीं है, तो इसलिए इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट निकाला गया। कोई जमाना आपको याद होगा एपेक की बात होती थी उसमें भारत में इंक्लूडेड था, लेकिन धीरे धीरे इस तरह की बातें उठी कि नहीं सबको साथ में मिलकर चलना और इंडो पैसिफिक में भारत ही नहीं बल्कि भारत का जो इंडियन ओशन का पश्चिमी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा भी इसी में माना गया है। और हमारे अभी वो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात चली है भारत और जापान के बीच में कि किस तरीके से इन सब पूरे मसलों को आगे करा जाए, क्योंकि एक तरीके से देखा ही जाएगा कि अफगानिस्तान एक बहुत डिस्टेबलाइज तरह से रहा है और सारे पड़ोसी देशों को एक इंस्टेबिलिटी और आतंकवाद फैल रहा है। दूसरा चीन ने जिस तरीके से दक्षिण समुद्र में उन्होंने अपने कई द्वीपों को टापुओं को ऊपर जो है वो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी जो मिलिट्री स्ट्रक्चर माने जाते हैं, एक प्रकार से जो भय का वातावरण बना है, तो आवश्यक है कि सब देश जो है वो आपस में मिलकर रहे और भारत उसके लिए जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो देशों ने माना है कि भारत को भी पूरे तरीके साथ में लेकर चलना है। मेरे ख्याल से ये आसियान का जो हम मानते हैं कि वो उनको सेंट्रल रोल उनका रहना चाहिए, तो बाकी देश जो है उनके साथ में जोड़ सकते हैं।
ये थे पूर्व विदेश सचिव शशांक। अब रुख करते हैं कुछ चुनावी सरगर्मियों का। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान की तारीख पास आ रही है, कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं का दौरा बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह के छत्तीसगढ़ पहुंचने से ठीक पहले बीजापुर में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें जवानों समेत 6 लोगों के घायल होने की खबर है। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट।
कमल खिलेगा फिर इस बार, फिर से बने रमन सरकार, छत्तीसगढ़ खुशहाल है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 में से 72 सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए छोटे बड़े शहरों में प्रचार के लिए गाने और नारों का शोर मचाती गाड़ियां घूम रही हैं। लेकिन इन सबसे कहीं अधिक आवाजें उन नेताओं की गूंज रही हैं जो कांग्रेस या भाजपा का प्रचार करने के लिए हर दिन छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। बुधवार को छत्तीसगढ़ पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में माफियाओं का जिक्र करते रहे।
कांग्रेस के समय में यहाँ खनन माफिया हावी थे, वन माफिया हावी थे, गौ तस्कर हावी थे, धर्मांतरण की राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चरम पर हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माफिया के दिन समाप्त।
योगी ने छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के सरकार को राम राज्य की संज्ञा दी।
राम राज्य के दिन प्रारंभ हो गए, जनता को उनकी सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ और राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार किया है डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर।
लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी कई सभाओं में रमन सिंह के इस राम राज को निशाने पर लिया। उन्होंने पनामा पेपर्स में मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद बेटे अभिषेक सिंह के शामिल होने का आरोप लगाया।
चीफ मिनिस्टर का बेटा छत्तीसगढ़ से पैसा लूटकर पनामा के बैंक अकाउंट में डालता है, उसका नाम पनामा पेपर्स में आता है तो ना नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलता है ना छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर। कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी की जेल नहीं होती।
बुधवार को ही फिल्म अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ में कई सभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दौरा करने वाले राजनाथ सिंह ने रमन सिंह के कामकाज को अपने भाषणों में जगह दी।
जिसने 2003 में आकर छत्तीसगढ़ देखा होगा और आज आकर छत्तीसगढ़ देख रहा होगा बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ का रूप और रंग लोगों को बदला हुआ दिखाई देता है बहनों भाइयों।
इधर विधानसभा की 72 सीटों पर चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई है। बस्तर के इलाके में तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 1,00,000 जवानों को छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में भेजा जा रहा है। आज सुरक्षा बल के ऐसे ही एक काफिले पर बीजापुर में माओवादियों ने हमला किया। छत्तीसगढ़ में नक्सल मामलों के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के अनुसार
बीजापुर से 5 किलोमीटर पहले भोपालपट्टनम की ओर एक घाटी है, पुलिस की जो काफला आ रहा था उसमें एक आगे चलने वाली गाड़ी बीएसएफ पे एक आईडी ब्लास्ट हुआ है और उसमें 4 जवान और 1 सिविलियन और 1 DRG का आदमी, 6 लोग घायल हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में जिन इलाकों में 20 नवंबर को मतदान होने हैं वो गंभीर रूप से माओवाद प्रभावित तो नहीं है, लेकिन धमतरी, गरियाबंद और बलरामपुर जैसे जिलों में माओवादियों के लगातार उपस्थिति के कारण इन इलाकों में भी चुनाव के दौरान सुरक्षा की चुनौती जरूर बनी रहेगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
अब समय है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहां का। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 11वें आम चुनाव होने जा रहे हैं। पिछली बार खालिदा जिया के मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार कर दिया था, जिससे शेख हसीना की बांग्लादेश आवामी लीग आराम से लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई थी। इस बार भी चुनाव से पहले काफी गतिरोध बना रहा। बांग्लादेश के चुनावी हालात कैसे हैं और किन मुद्दों पर बात हो रही है, इस बार के दुनिया जहां में इसी की पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी आदर्श राठौर।
दुनिया जहां। पूर्व दिशा में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाने वाला बांग्ला भाषी इलाका साल 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश नाम से नया मुल्क अस्तित्व में आया। बांग्लादेश की स्थापना लोकतांत्रिक देश के रूप में हुई, मगर लोकतंत्र अभी तक यहाँ जड़ें नहीं जमा पाया है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और तख्तापलट के बाद 15 साल तक यहाँ सैन्य शासन रहा और लोकतंत्र की सही मायनों में स्थापना 1990 में हुई, लेकिन इसके बाद भी यहाँ खूब राजनीतिक उठापटक हुई। बांग्लादेश की राजनीति में दो बड़े और प्रमुख चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया। मगर कभी अवामी लीग ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया तो कभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि इसकी वजह क्या रही।
जहाँ से 13वां संविधान संशोधन में केयरटेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी, 15वां संविधान संशोधन में जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको खत्म कर दिया गया और ये बात कही गई कि जो भी बांग्लादेश में चुनाव होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। आप समझ गए? तो अभी जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनली जो प्रोविजन है कि अब जो बांग्लादेश में जो भी इलेक्शन होंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। तो 2014 का जब इलेक्शन हुआ तब ये फिर एक सवाल उठा कि भाई अब ये जो चुनाव होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर में होंगे, तो इलेक्टेड कौन होगी, जो सत्ता में है, या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाएगी इसके तहत चुनाव होगा। लेकिन BNP ने बायकॉट किया, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, चुनाव कर दिए गए, करीब 150 सीटें अनअपोज्ड हो गई और करीब 150 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें अवामी लीग दोबारा सत्ता में आ गई 10वें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में।
इस बार हो रहे 11वें आम चुनाव में जहां बांग्लादेश अवामी लीग लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है, वहीं मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। पिछली बार 2014 में आम चुनाव हुए थे तो विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने इनका बहिष्कार कर दिया था। नतीजा ये रहा था कि अधिकतर सीटों पर अवामी लीग ने निर्विरोध बाजी मारकर फिर से सत्ता हासिल कर ली थी। इस बार काफी आनाकानी के बाद विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेने को तैयार तो हुए हैं, मगर उन्होंने डेट्स आगे बढ़ाने की मांग की थी जिसे चुनाव आयोग ने मानते हुए तय शेड्यूल से एक हफ्ता बाद यानी 30 दिसंबर को चुनाव कराने का फैसला किया है।
बांग्लादेश में कोई भी चुनाव जो नेशनल चुनाव होंगे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के तहत होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करती है और अपोजिशन कहती है कि ये इसमें इलेक्शन को मैनेज करने का और
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने के ज्यादा संभावना है। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की दो तीन डिमांड है। पहली डिमांड है कि जो चुनाव हो वो केयर टेकर गवर्नमेंट, न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के तहत हो या नेशनल गवर्नमेंट के तहत हो।
लेकिन जानकारों का कहना है कि इस बार बांग्लादेश में हालात थोड़े बेहतर होते दिखते हैं, क्योंकि पिछली बार जहां मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था, वहीं इस बार वो चुनाव लड़ने के लिए राजी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रहे देव मुखर्जी इसे बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत मानते हैं।
ये बड़ी खुशी की बात है कि इलेक्शन में वहाँ के जो राजनीतिक दल जो है वो अंश ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार इन्होंने वो नहीं किया था। वो करीब वन पार्टी इलेक्शन ही हो चुका था क्योंकि ये लोग बाहर रहे थे, एंड क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है।
दरअसल मुख्य समस्या आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को लेकर, जिन्हें इस साल भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में दोषी पाया गया है और वो जेल में बंद हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि खालिदा को राजनीतिक दुर्भावना के तहत फंसाया गया है और उन्हें रिहा करना चाहिए। प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि इस स्थिति का बांग्लादेश की राजनीति पर क्या असर पड़ा है।
जो खालिदा जिया पे जो आरोप लगे हैं और जो कन्विक्शन हुआ है 10 साल का करप्शन के केस को लेके, कि उनकी डिमांड है कि जो ये सारे चार्जेज हैं ड्रॉप होने चाहिए और उनको जेल से रिहा कर दिया जाना चाहिए, जो कि मुझे संभावनाएं लगती नहीं है, क्योंकि ये जुडिशरी का मामला है, ये कोर्ट का मामला है। उनका बेटा जो तारिक रहमान है वो लंदन में है, उनपे भी केसेज हैं, उनको 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 भी यहाँ से एक तरीके से भगोड़ा घोषित किया गया है। अगर वो भी आते तो उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो पहली बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इनके ये लोग डायरेक्टली चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। फखरुल अहमद एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी है, वो बेसिकली अभी डिफेक्टो लीडर है, वही चुनाव कमान को संभाले हुए हैं। खालिदा जिया जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है वहाँ अंदर से जेल से दे रही है।
चुनावों में मुख्य मुकाबला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के बीच है। देव मुखर्जी बताते हैं कि दोनों की विचारधारा में बहुत फर्क है और दोनों का जनाधार भी अलग है।
इस्लामिक कट्टरपंथियों को जब पिछले पहले जब बीएनपी सरकार में थे वो तो उनको पूरी मदद दे रहे थे, और जब से ये अवामी लीग की सरकार आई है वो पूरी अपने वो कोशिश जारी रखे हैं कि इनको दबाया जाए, और उनको कुछ सक्सेस भी मिली है इस बारे में। और बीएनपी के साथ जमात के और इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ उनकी जो एसोसिएशन है ये बहुत पुरानी बात। शेख हसीना का जो अवामी लीग है उनको हम लेफ्ट विंग तो हम नहीं कर सकते हैं, हाँ वो दूसरी पार्टी जरूर ज्यादा राइट विंग है।
शेख हसीना 2009 से ही प्रधानमंत्री पद पर बनी हुई है, ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? जेएनयू के प्रोफेसर संजय भारद्वाज बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी भी टक्कर देने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है।
लोग हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं, तो दोनों बातें हैं कि जनता किसको प्रायोरिटी देगी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो किन को चुनेगी? माहौल खालिदा जिया का भी है, लेकिन सवाल यह है कि जो बीएनपी है और खालिदा जिया है ये एक अभी वीक पॉलिटिकल पार्टी हो चुकी है। इनके जो 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 मास बेस है जो वो खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इनके साथ इनके पास में लीडरशिप क्राइसिस है, ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस है। अवामी लीग एक मास बेस पार्टी है।
बांग्लादेश में अब तक हुई राजनीतिक उठापटक का नतीजा ये रहा है कि देश असली मुद्दों से भटकता हुआ नजर आया है। यहाँ कट्टरपंथ का उभार देखने को मिला है। नतीजा ये रहा कि 2014 से 2017 तक ब्लॉगर्स, नास्तिकों और सेक्युलर बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया गया, कईयों की हत्या भी हुई। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके देव मुखर्जी बताते हैं कि ऐसे तत्वों को राजनीतिक शह भी मिली थी, लेकिन अब ये सिलसिला बदला है।
बांग्लादेश में एक जो प्रॉब्लम जो था 40 साल का जो प्रॉब्लम था कि उनका जो इम्प्यूनिटी का जो एक माहौल जो फैला हुआ था कि आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में है तो आपको इस पे एक रिहा मिल जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ये सरकार ने जो किया है मेरे विचार में इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो जो वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल में 71 में जिन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर जो अत्याचार किया था उसको उनको सजा मिला है, जो लोग बीएनपी के मंत्रिसभा में जमात के मंत्री थे दे हैव बीन हैंग्ड, और आगे भी अगर कोई वहां की सरकार या कोई ग्रुप ये सोचते हैं कि हाँ हम जो मर्जी कर लेंगे आगे का सरकार तो हमें रिहा कर देंगे, दैट हैज बीन ब्रोकन।
ऐसे में सवाल उठता है कि बांग्लादेश की जनता का मूड क्या है, क्या शेख हसीना विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगी या जेल में बंद खालिदा जिया के प्रति सहानुभूति से उनकी पार्टी को फायदा मिलेगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं कि दोनों पार्टियों के पास अपने अपने फायदेमंद पहलू हैं। वहीं बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त रह चुके देव मुखर्जी कहते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर देखें तो शेख हसीना का काम अच्छा रहा है, लेकिन मतदाताओं के रुख को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
ये जो इस्लामी कट्टरपंथी जो है अब इसको मुकाबला करना, क्योंकि इनका एक तो अंदर से इनका सपोर्ट है और बाहर से भी सपोर्ट है, कहाँ से आते सपोर्ट आती है हम जानते भी हैं। अब यहाँ इसके मुकाबला इस सरकार ने बड़ी अच्छी तरह किया है, चैलेंज इज नॉट ओवर। ये लोग हैं, इन्होंने ये दिखा है कि ये बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की सरकार इसको नहीं मानेंगे, तो ये मैं एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ। और इकोनॉमी बेसिकली इससे इकोनॉमी वो जब ऊपर जाएगा तो सरकार उसी को वापस आना चाहिए।
बांग्लादेश की गिनती दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में होती है। बांग्लादेश में गरीबी भी बहुत है, मगर उसने कुछ मामलों में पिछले कुछ समय में सुधार भी किया है। पिछले कुछ सालों में उसने जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार कम की है और साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मगर इस देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, राजनीतिक अस्थिरता और इसके बीच बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ से निपटना। ऐसे में ये चुनाव बांग्लादेश के लिए ही अहमियत नहीं रखते, बल्कि पूरे विश्व समुदाय की नजर इन पर टिकी हुई है।
दुनिया जहां पेश कर रहे थे आदर्श राठौर, और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। हांगकांग ओपन में भारत की पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने अपने अपने ओपनिंग मैच जीत लिए हैं और पहुंच गए हैं प्री क्वार्टर फाइनल्स में, जहां एक तरफ पीवी सिंधु ने थाईलैंड की निचाओवन जिंदापोल को 21-15, 13-21, 21-17 से हराया, वहीं दूसरी तरफ समीर वर्मा ने थाईलैंड के ही सपन्यू को 21-17, 21-14 से हरा दिया। पीवी सिंधु के इस प्रदर्शन के बारे में फॉर्मर एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना ने कहा,
मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी जीत है पीवी सिंधु के लिए। निचाओवन जिंदापोल जो है वो एक काफी मजबूत खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु के लिए ये एक अच्छी जीत है, और खासकर जब आप पहले ही दौर में एक अच्छे खिलाड़ी से खेलते हैं, पीवी सिंधु मेरे हिसाब से इसमें आगे जरूर जाएंगी। हालांकि आगे का राउंड जो है उनकी जापान की खिलाड़ी और कोरिया की संगजी गुन, जो कि एक काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और पीवी सिंधु के साथ उनका काफी हर बार कांटे का मैच होता है, उनसे उनका मुकाबला होगा। पर मैं समझता हूँ कि पीवी सिंधु जो हैं उनको वो मुकाबला जीतना चाहिए और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना चाहिए।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की। आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच पल्लीकेल में। दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीता इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो करेंगे बल्लेबाजी, पर पहले ही दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम 285 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंका के दिलरुवन परेरा और मलिंडा पुष्प कुमार ने 4-4 विकेट लिए। और जाने से पहले बात टेनिस की। लंदन में चल रहे ATP फाइनल्स में रॉजर फेडरर ने डोमिनिक थीम को हराया और अब उनका मुकाबला होगा केविन एंडरसन के साथ। ये मुकाबला होगा गुरुवार को। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाने के मामले में आज सुनवाई हुई। घंटों चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने म्यांमार की नेता आंग सान सू ची से कहा है कि म्यांमार में पिछले साल रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो हिंसा हुई उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्रीलंका की संसद में आज नवनियुक्त प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख ने बताया कि यमन में जारी युद्ध के चलते वहां के आधे से अधिक जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई है। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।